قرآن کریم جتنا بھی نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کی تکرار کی جاتی تھی اس مہینے میں، اور بار بار وہی قرآن کریم دوبارہ نازل فرمایا جاتا تھا. بس خدا تعالیٰ اس عظیم شان برکت کو کی طرف توجہ دلا کر فرماتا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. جو جس کسی کو بھی یہ مہینہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہو، فلیصم ہو، وہ اس میں ضرور روزے رکھے. یعنی فرمایا کہ جس شخص پر بھی یہ مہینہ آ جائے وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ مہینہ کمزوروں پر بھی آتا ہے، طاقتوروں پر بھی آتا ہے، ان پر بھی آتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور ان پر بھی آتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. مہینہ تو ایک جغرافیائی حقیقت کا نام ہے جو دنیا کے طبی جغرافیہ سے تعلق رکھنے والی حقیقت ہے، اس لیے یہ تو سب پر آتا ہے. شہد منکم میں جہاں شہد فرمایا گیا، وہاں صرف یہ مراد نہیں کہ جو تم میں سے اس مہینے کو دیکھے، بلکہ شہادت کے تمام تفصیلی معنی یہاں مراد ہیں. مراد یہ ہے جو اس مہینے کا عرفان رکھتا ہو، جو اس مہینے کا منتظر ہو اور پھر اسے پالے، جو اس مہینے پر نگران مقرر کروایا گیا ہے خدا کی طرف سے، اس کے حقوق ادا کرنے کی نگرانی جس کے سپرد کی گئی ہے. شہادت کے یہ سارے معنی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور معنی ہیں. بس شہد منکم سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے ہر وہ شخص جس کا رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کیا گیا ہے، جو اس کا منتظر رہتا ہے اور پھر اسے دیکھ لیتا ہے، وہ جو اس کے معارف سے واقف ہے، اس کے فوائد سے آگاہ ہے، وہ جس پر جس کے ذمے اس کی ذمہ داریاں ڈالی گئی، جس کے ذمے اس کے تقدس کی حفاظت کی گئی. ہر وہ شخص جب رمضان کو پا لے، فلیصم ہو، تو پھر وہ روزے رکھے. لیکن ایسے اشخاص جن میں یہ تمام صفات پائی تو جاتی ہیں مگر مریض ہیں یا سفر کی حالت میں ہیں، وہ اس مہینے کے بدلے اور دنوں میں روزے رکھ لیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا. یہ جو فرمایا گیا اس میں عبادت کا فلسفہ بیان فرما دیا گیا ہے، اگرچہ رمضان کی عبادت سے جسمانی تنگی کا بھی تعلق ہے. اور بعض رمضان کے مہینے جو بعض علاقوں میں نہایت شدید گرمی کی حالت میں آتے ہیں، ان میں بہت سخت جسمانی اذیت بھی انسان کو پہنچتی ہے، مگر اذیت دینا خدا کا مقصود نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پابندی نہیں لگائی جاتی کہ جو گرمیوں کے روزے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے ویسے ہی شدید گرمیوں کا انتظار کیا جائے، ویسے ہی تکلیف دہ حالات کا انتظار کیا جائے. جب وہ آئیں تو رکھو تاکہ وہ بدلہ پورا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ ہمارا مقصد دکھ دینا اور تکلیف پہنچانا نہیں ہے، اس لیے ہم اس شرط کو اڑا دیتے ہیں. اور اگر تم واقعتاً مجبور ہو کر اس مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتے، تو تمہیں کھلی آزادی ہے کہ روزوں کی گنتی پوری کرو، خواہ وہ نسبتاً آسان دنوں میں پوری کرو یا اسی طرح کے سخت دنوں میں پوری کرو. تمام عبادات میں یہی فلسفہ شامل حال ہے. کسی جگہ بھی عبادت بذات خود اذیت کا موجب نہیں، نہ اذیت سے اللہ تعالیٰ کو لذت پاتا ہے. بنی نوع انسان کو دکھ میں مبتلا کر کے خدا تعالیٰ کوئی فرق نہیں پاتا. نہ دکھ میں مبتلا ہونا براہ راست इंसान के लिए तज़किया नफ्स का मुझे बन सकता है, असल इबादत की रूह अतात है। अतात के साथ अगर दुख वाबस्ता हो तो उस दुख को खुशी से कबूल किया जाए, और अतात के साथ अगर फरहत वाबस्ता हो तो जबरदस्ती उस फरहत को दुख में तब्दील ना किया जाए, बल्कि खुशी से उस फरहत को भी कबूल किया जाए, और यह कोशिश ना की जाए कि महबूब की खातिर जबरदस्ती तकलीफ उठाकर उसे खुशी खुश होने पर मजबूर किया जाए। ये रूह जो है जबरदस्ती किसी को खुश करना, किसी की खातिर तकलीफ उठाकर, यह इस्लामी इबादात से कुलियतन मफूल है। आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौजू पर बारहा मुख्तलिफ मौके पर मुसलमानों को नसाहत फरमाई और खूब खोल खोल के वाज़े फरमा दिया कि तुम खुदा ताला को सख्तियों के जरिए मजबूर नहीं कर सकते, यानी अपने जिस्म को सख्ती में डालकर, अपनी जान को मुशक्कत में डालकर जबरदस्ती तुम खुदा की रजा हासिल नहीं कर सकते। अगर इस दौड़ में तुम पड़ गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को तुम कभी हरा नहीं सकोगे, वो तुम्हें तोड़ के रख देगा, लेकिन तुम जबरदस्ती खुदा को कभी खुश करने में कामयाब नहीं हो सकते। इबादत की रूह अतात है, और अतात के साथ यह शर्त है कि जिस हाल में भी हो उस हाल में अतात की खातिर अपने महबूब की रजा को अपनी रजा के ऊपर गालिब कर दिया जाए। नाचे दूसरे मऊ जो फरमाते हैं वो फजल तेरा यार या कोई इतला हो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। ये वही फलसफा है, असल मकसूद रजाए बारी ताला है। सलाम फरमाते हैं इस्लाम चीज क्या है, खुदा के लिए फना, तर्क रदाए खीश पे मर्जी खुदा। इस्लाम का खुलासा चाहते हो तो वो तो सिर्फ ये है, खुदा के लिए फना, अल्लाह के लिए अपनी जात के ऊपर एक फना तारी कर दो, तर्क रजाए खीश, अपनी जाती मर्जी, अपनी जाती ख्वाहिशात को खुदा ताला की मर्जी के ताबे कर दो। यह है इस्लाम का खुलासा। नाचे इस दौरान अगर तकलीफ हो तो उससे राजी रहो, अगर आराम पहुंचे तो उस आराम को भी इबादत समझो। यह इस्लामी फलसफा ऐसा है जो तमाम इंसानी जिंदगी की हर हालत पर मुहित हो जाता है, और इस्लामी इबादात को दूसरी तमाम इबादात के तसव्वुरात तसव्वुर से बिल्कुल मुमताज कर देता है। जितने दीगर मजाहिब हैं उनमें इबादत के साथ जानकारी, तकलीफ और अजियत का मफहूम शामिल मिलता है। किसी भी मजहब की इबादत का तसव्वुर आप ढूंढें उनकी कुतुब में या उनकी रवायात में, उस तसव्वुर में ये एक जुज़्वे लाइनफाक मिलेगा आपको जो अलग नहीं हो सकता इससे। अगर तुम खुदा को खुश करना चाहते हो तो उसके लिए अमदन तकलीफ उठाओ, और महज इसलिए तकलीफ उठाओ कि खुदा तुम्हारी तकलीफ से राजी होता है। चुनांचे इन तसव्वुरात के ताबे ये ऐसे हालात ऐसे वाकयात में मिलते हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मज़ाहिब में कि बाद लोगों ने बाजू खड़ा किया और खड़े खड़े बाजू सूख गया, और उन्होंने इसी को इबादत समझा कि खुदा की खातिर एक बाजू को ऊंचा खड़ा किया और फिर नीचे नहीं गिरने दिया किसी हालत में, यहां तक कि उसी हालत में सूख गया, और बहुत बड़ा मार्का समझा गया। लंबी फाका कशी ऐसी जो जिस्म को बिल्कुल तोड़ के रख दे, ये भी इबादत समझी गई, और कई किस्म के मुशक्कतें बकायदा इबादत का हिस्सा बनाई गई, और वो जितनी ज्यादा मुशक्कतें कोई शख्स बर्दाश्त कर सकता है समझा जाता है कि उतना ही बड़ा वो ऋषि बन जाता है, उतना ही बड़ा वीर शक्ति हो जाता है। आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरानी तालीम के मुताबिक खूब खोल खोल कर इस मज़मून को واضح فرمایا کہ عبادت کا بذات خود مشقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ برعکس معاملہ ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. تم اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو خدا بھی تم سے پیار کرتا ہے, اور اپنے پیارے کے لیے آسانی چاہی جاتی ہے نہ کہ تکلیف. ولا یرید بکم العسر, ہرگز تمہارے لیے خدا تعالیٰ تکلیف نہیں چاہتا. جب اس مضمون کو ہم سمجھتے ہیں تو ایک پہلو جو کھل کر سامنے آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مضمون انسان کی ساری زندگی پر حاوی ہو گیا. جب عبادت کا یہ مفہوم ہی نہیں رہا کہ تکلیف اٹھائی جائے, اور عبادت کا مفہوم صرف رضائے باری تعالیٰ کا حصول ہے, تو انسانی زندگی میں تو دو ہی قسم کے حالات آتے ہیں, یا مشقت یا راحت. جس کی مشقت بھی خدا کی خاطر ہو جائے اور جس کی راحت بھی خدا کی خاطر ہو جائے, اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن گیا. اس فلسفے سے باہر جتنے فلسفے ہیں وہ انسانی زندگی کے ہر حصے کو عبادت بنا سکتے ہی نہیں, ناممکن. جب ایک عیسائی راحت محسوس کرتا ہے ازدواجی زندگی میں تو وہ اس عبادت کے تصور سے ہٹ کر محسوس کرتا ہے جو اسے رحمانیت کی تعلیم دیتی. جب ایک سادھو آرام کرتا ہے ہندوستان کے کسی جنگل میں تو اس عبادت کے تصور سے ہٹ کر آرام کرتا ہے جو اسے مسلسل مشقت پر آمادہ کر کے چلی جاتی ہے. غزے کی دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا مذہب نہیں جس کا عبادت کا فلسفہ انسانی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہو. ایک صرف اسلام ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے کو عبادت بنا دیا ہے. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو بارہا آپ سن چکے ہیں لیکن ہر دفعہ وہ ایک بڑی حضرت اپنے اندر رکھتا ہے کہ اگر تم بیوی کے منہ میں اس خیال سے لقمہ ڈالو کہ میرے مولا کی رضا یہ ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کا خیال رکھو, تو یہ لقمہ ڈالنا بھی تمہارا عبادت بن جائے گا. جو پیار اور محبت کا مزہ ہے وہ تو الگ نہیں ہوگا, وہ تو باہر آئے گا, لیکن یہ لقمہ بھی عبادت بن جائے گا. تمام ازدواجی زندگی کا ہر فعل جو اس فلسفے کے تابع اختیار کیا جاتا ہے وہ عبادت الہی بن جاتا ہے. بس ایک ہی ہے کامل وجود انسانوں میں سے, یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جن پر کامل دین نازل ہوا, ان معنوں میں بھی کامل کہ انسانی زندگی کے ہر لمحے پر وہ دین حاوی ہو گیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو اس مقام پر فائز ہے, تو بڑے نو انسان میں یہ اعلان کر سکتا ہے ہم تجھے اجازت دیتے ہیں بلکہ امر دیتے ہیں, اس بات کا امر کرتے ہیں کہ اعلان کرتے ہیں انہا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, میری عبادتیں, میری قربانیاں, میرے زندگی کا ہر پہلو, اور اس زندگی میں جو میں ہر وقت خدا کی خاطر بہت قبول کرتا ہوں. محیایا و مماتی کا صرف یہ مطلب نہیں کہ میرا زندہ رہنا اور بالآخر میرا مر جانا, بلکہ مراد یہ ہے کہ اس زندگی میں وہ تمام کیفیات جو آسانی سے مشابہت لگتی ہیں, اور وہ تمام کیفیات جو مشکلات سے مشابہت رکھتی ہیں, مشکلات کے قریب تر ہیں یعنی موت کے, وہ تمام کیفیات اور ان کے دونوں انتہائی کنارے بھی, یہ سب کچھ میرے خدا کے لیے وقف ہو چکے ہیں. عجیب بات ہے, اور یہی اسلام کا حسن ہے کہ جہاں آسانی پیدا کر دی اسی سادہ سے فکرے میں مشکلات بھی رکھ دی, اور ایسی تعلیم بھی دے دی جو سب تعلیمات سے زیادہ مشکل بھی ہو جاتی. ایک سالک کے لیے आसानी देखें तो कितनी आसानी है कि खुदा चाहता है कि तुम्हें आसानी पहुंचाए और तुम्हारे लिए इबादत दिक्कतों का जरिया और तकालीफ का जरिया ना बने। दूसरी तरफ सारी जिंदगी पर इस मज़मून को हावी करके इंसानी जिंदगी की हर नीयत, उस नीयत का इतलाक जिस इंसानी सूरत हाल पर होता है, हर उस चीज को इबादत बनाकर इंसानी जिंदगी को जकड़ दिया है खुदा की रज़ा, उसका कोई लम्हा अपना नहीं रहने दिया। और ये इतना मुश्किल काम है कि दुनिया के किसी मजहब ने कभी किसी इंसान पर इतनी मुश्किल नहीं डाली थी, लेकिन ये आखिरी मुकाम वालों के लिए मुश्किल है। आगाज करने वालों के लिए या दरमियानी राह में चलने वालों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो कैसा हसीन कलाम है कि एक ही फिक्रे में आसानियां भी पैदा कर दी और ऐसी कि उनकी कोई मिसाल नहीं, और मुश्किलात भी ऐसी पैदा कर दी कि उनकी भी कोई मिसाल नहीं, लेकिन वो मुश्किलात ऐसी हैं जो अपने साथ आसानियों को जन्म देती चली जाती है। इन्ना माल उसरे युसरन, इन्ना माल उसरे युसरा का कानून भी जारी हो जाता है। एक अजीब जहान है इस्लामी इबादत का, जिसके पासंग को भी दूसरे निस्बतन अदना हालत के मजाहिर नहीं पहुंच सकते। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा में एक और सबक भी हमें दे दिया गया, और वो ये है कि अगर खुदा आसानी चाहता है तो इबादत में जहां जहां भी कोई मुश्किल हमें मिलती है उसकी दो ही सूरतें हैं, या तो ये कि वो मुश्किल हमारी तरक्की के लिए, हमारी बका के लिए जरूरी थी, जिसे नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। मसलन माँ बच्चे के लिए आसानी चाहती है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन सुबह मारपीट के स्कूल भी भिजवाती है। शदीद गर्मी हो या शदीद सर्दी हो तब भी उसे मजबूर कर देती है अपने आराम को छोड़कर स्कूल भी स्कूल जाने के लिए। इसलिए तो नहीं कि माँ नरमी नहीं चाहती बच्चे के लिए, उससे ज्यादा तो बच्चे का कोई हमदर्द नहीं हो सकता, इसलिए कि मजबूर है। वो जानती है कि इसके बगैर इस बच्चे की कामयाबी मुमकिन नहीं है, ये जिंदगी में एक कामयाब वजूद बन नहीं सकता। बस इस फलसफे को मजबूत रखते हुए कि खुदा आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता, जहां जहां भी इबादत में मुश्किलात नजर आएंगी उसका एक तभी हल ये सामने आ जाएगा कि ये मुश्किलात की खातिर नहीं रखी गई, बल्कि इंसानी तरक्की के लिए इनका अबूर करना एक लाजिमा है, उसके बगैर इंसान आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए मुश्किलात रखने वाले के लिए तबीयत में कोई बोझ पैदा नहीं हो सकता। मुश्किलात ऐसे मौके पर हमारे लिए रखने वाले के लिए किसी किस्म का दिल में कोई बोझ नहीं आता, बल्कि अगर इंसान समझ ले इस मज़मून को तो वो जानता है कि ये एक मजबूरी है जो हमारी भलाई की खातिर दरपेश है, इसे राह से हटाया नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ एक और मज़मून की तरफ भी ध्यान जाता है, इन्ना माल उसर युरीदुल्लाह बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, कि जहां तक हम किसी चीज को अपने लिए मुश्किल समझते हैं बाज़ दफा वाकईतन वो एक मुश्किल चीज होती है, और बाज़ दफा एक महज निस्बती मजमून होता है, हकीकत में वो चीज मुश्किल नहीं होती। और वो निस्बती मजमून बाज़ दफा जाविया बदलने से नया रंग इख्तियार कर लेता है, बाज़ दफा तजर्बे के बाद कुछ अरसे के बाद एक नया रंग इख्तियार कर लेता है। क्योंकि वो चीजें जिन्हें आप शुरू में मुश्किल समझते हैं कुछ अरसे के बाद आप जब एक्वायर कर लेते हैं उस मजाक को, उसके लुत्फ उससे लुत्फ उठाने के तरीके सीख लेते हैं, तो आप हैरत से देखते हैं कि क्यों आप उस चीज को मुश्किल समझा करते थे। اور باتوں کو تو چھوڑیے, یہ مضمون ساری زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے. ایک بچے کے چلنے ہی کو لے لیجیے, کتنا مشکل مضمون ہے اس کے لیے جب وہ شروع میں ٹھوکنے کھاتا, گرتا, کئی قسم کے آلات کا سہارا لیتا, کبھی انگلیاں پڑتا پکڑتا بڑوں کی اور کوشش کرتا ہے کہ میں دو قدم اٹھا سکوں لیکن نہیں اٹھایا جاتا, جہاں چھوڑتا ہے وہ سہارے کو وہاں گر جاتا ہے. لیکن جب کچھ عرصے کے بعد وہ ان مقامات سے آگے بڑھ جاتا ہے تو چلنا اور آہستہ چلنا اس کے لیے ایک نعمت و راحت بن جاتا ہے. اور لمبا عرصہ اگر اسے بستر پر لیٹنے پر مجبور ہونا پڑے تو حسرت اور دکھ سے یاد کرتا ہے وہ دن کے میں چلا کرتا تھا. حالانکہ آغاز میں اگر آپ دیکھیں تو لیٹنا اس کی راحت تھا اور چلنا اس کے لیے عذاب تھا, اور تھوڑے ہی عرصے میں لیٹنا اس کے لیے عذاب بن گیا اور چلنا اس کے لیے راحت ہو گیا. اسی طرح مذاق ہے مختلف کھانوں کے, ان کا ذوق شوق ہے, حالات کے بدلنے سے, تربیت کے بدلنے سے تھوڑی دیر کے بعد جب انسان ہر طرف نظر دوڑاتا ہے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ حقیقت اپنی ذات میں ایک گھومنے والی چیز ہے جو کہیں ایک جگہ ایک مقام پر فکس نہیں کی جا سکتی, کھڑی نہیں کی جا سکتی. زاویہ نگاہ بدلتا ہے, آپ کی رفتاریں بدلتی ہیں, آپ کے رخ بدلتے ہیں اور رشتے بھی بدلتی جاتی ہیں, یہاں تک کہ انسان ہر اس چیز میں اعتماد کھو دیتا ہے جسے پہلے وہ یقین کے ساتھ اچھی ہے وہی سمجھا کرتا ہے. ایسی صورت میں صرف ایک ہی ذات ہے جو بغیر نسبت کے دیکھنے والی ذات ہے, جو بہتر جان سکتی ہے کہ کس جگہ آپ کا فائدہ ہے اور کس جگہ آپ کا نقصان ہے. اس کے سوا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جو تمام زندگی نسبتوں میں پرورش پانے والے وجود ہیں, نسبتی حیثیتوں سے فیصلہ دینے والے وجود ہیں, آپ معلوم کر سکیں گے کہ آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا آپ کے لیے برا. چنانچہ ایک مردار کے پاس جب گدوں کو آپ دیکھتے ہیں یا کتوں کو دیکھتے ہیں کتنے مزے سے وہ اور کس قدر لذتیں اٹھا اٹھا کر وہ اس مردار کو کھا رہے ہیں جس کے پاس سے گزرنا بھی آپ کے لیے مصیبت ہے, اور آپ حیرت سے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان بد نصیبوں کے نصیب میں یہ گندگی رہ گئی تھی. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ محض زاویہ بدلنے کی بات ہے, خدا تعالیٰ نے کسی کے نصیب میں بھی محض گندگی نہیں رکھی. ہر تخلیق کو ایک مذاق عطا فرمایا ہے, ایک زاویہ نظر عطا فرمایا ہے, اور وہی چیز جو آپ کو گندگی نظر آ رہی ہے وہ اس کے لیے ایک نعمت بے بہا ہے, ایک غیر مترقبہ نعمت ہے. چنانچہ اس کتے سے کے دل سے پوچھیں جو رزت اٹھا رہا ہوتا ہے اس گندگی, وہ کس موج میں ہے, اور اگر آپ پوچھ نہیں سکتے تو اس کو روڑا اٹھا کر ایک کوشش کریں اس کو بگانے کی, اس نعمت سے محروم کرنے کی کوشش کریں جسے آپ گند سمجھتے ہیں, پھر دیکھیں وہ کس طرح آپ پر حملہ ہوتا ہے. تو نسبتیں بدل جاتی ہیں, اور صرف ایک ہی ذات ہے جو عالم الغیب و الشہاد ہے, وہی ہے جو جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا چیز مفید ہے, کس کے لیے کیا نعمت ہے اور کیا کرنا ہے. اور بسا اوقات انسانی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ کبھی ایک چیز کو وہ نعمت سمجھ رہا ہوتا ہے, کبھی دوسری چیز کو نعمت سمجھ رہا ہوتا ہے, کبھی ایک چیز کو غم سمجھ رہا ہوتا ہے, کبھی دوسری چیز کو غم سمجھ رہا ہوتا ہے. اور عمومی طور پر جب انسانی ذوق کے دائرے پر آپ نگاہ ڈالتے ہیں تو ان سب چیزوں سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. اس لیے صرف ایک ذات ہے اور وہی عالم الغیب و الشہادہ ہے, وہی خالق و مالک ہے جو حقائق الاشیاء سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ کس انسان کے لیے کون سی چیز بہتر ہے, اور جو چیز اس کے لیے بہتر ہے وہ بسا اوقات اس کے لیے اس وقت دکھ کا موجب بھی بن سکتی ہے, تکلیف کا موجب بھی بن سکتی ہے, اور وہ یہ سمجھ سکتا ہے اس وقت کہ میرے لیے بہتر نہیں ہے. مثلا جیسے کہ میں مثال دی تھی, ایک एक गंदगी खाने वाले कुत्ते के लिए उससे बेहतर गुजार भी तो हो सकती है। हर चंद के उसे उस गंदगी में लुत्फ आ रहा है, लेकिन हो सकता है उससे बहुत बेहतर गुजार उसकी सेहत के लिए हर लिहाज से आप मुहैया कर दें। सादा गोश्त मुहैया करें, दूध मुहैया करें और चीजें जो कुत्ते के लिए जरूरी है वो मुहैया करें, लेकिन उस वक्त अगर आप उसको हटाएंगे तो आप पर हमला होगा। यही सलूक कौमें अपने वक्त के अंबिया से किया करती है। वो दुनिया की गंदगियों में मगन होकर उस वक्त उन गंदगियों को अपने लिए बेहतरीन गिजा समझ रही होती है, और जब वो आला रूहानी गिजा लेकर खुदा के शहजादे आसमान से उतरते हैं और उनको अभी तक बुलाते हैं तो उसी तरह उन पर हमला होते हैं जिसे कुत्ता यह समझकर कि मुझे नेमतों से महरूम किया जा रहा है उनके ऊपर गुर्राता और हमला करता है, गंदगी से बाहर निकलता है। तो ये मिसाल हर तरह से सोची से तो साधक नहीं आती, मगर समझाने के लिए एक पहलू इसका मैंने दिखाया है कि ये साधक आ भी जाती है। और इंसानी जिंदगी चूंकि जानवरों की जिंदगी से ज्यादा वसी मजमून रखती है, ज्यादा वसी तजारब रखती है, ज्यादा वसी पहलू है इसकी दिलचस्पी और जौक के, इसलिए एक इंसान की जिंदगी में बसा औकात आपको मुख्तलिफ जानवरों और मुख्तलिफ जानवरों के हालात भी नजर आ जाते हैं। गिरता है इंसान तो ऐसी कैफियत तक पहुंच जाता है जिसे कुरान करीम सूअर की कैफियत बयान फरमाता है। जब गिरता है तो ऐसी कैफियत तक भी पहुंच जाता है जिसे कुरान करीम बंदर की कैफियत बयान फरमाता है। ऐसी कैफियत तक भी पहुंच जाता है जिसे इंसान कुरान करीम कुत्ते की कैफियत बयान फरमाता है। और जब तरक्की करता है और आसमानी रहनुमा के ताबे उसकी हदायत के ताबे अपने जौक को बुलंद तर करता चला जाता है तो फिर फरिश्तों से भी आगे निकल जाता है, फिर उसकी हद उलूहियत की हदों से जा मिलती है। बस कुरान करीम फरमाता है कि हमने जो इबादतें तुम्हारे लिए फर्ज फरमाई उनका बुनियादी फलसफा यह है, युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तकलीफ नहीं चाहता, ये यकीन रखो। और जब ये यकीन रखोगे तो हर इबादत बिल आखिर तुम्हें लज्जतों की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि अगर वो तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहता तो जो तुम्हें तकलीफ महसूस हो रही है तुम्हारे अंदर कोई नक्स है, कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है, कोई बिगड़ा हुआ जाविया नजर है, जब वो ठीक हो जाएगा तो तुम यकीन करोगे और हक़ुल यकीन तक पहुंच जाओगे कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता था, तकलीफ नहीं चाहता। जब इस मज़मून पर आप इस रंग में गौर करते हैं तो अंबिया की वो कैफियत समझ आ जाती है, तो इबादतों में सख्त इबादतों में रातें खड़ी होकर गुजार रहे होते हैं और आप उन्हें ना भी देखें उनके वाकयात पढ़कर उन पर रहम करते हैं, बड़ी मुसीबतों में मुबतला थे बेचारे, और खुदा को मुखातिब करके फरमा रहा होता है फैजा फरख का फंसर वाला रबे का फर्क, तू खड़ा हो तकलीफ की खातिर नहीं, रहमत हासिल करने अपने रब से लज़्ज़तें पाने के लिए। चुनांचे एक ही दुनिया में कई किस्म की दुनियाएं आबाद हैं, लाखों करोड़ों किस्म के इंसान हैं और हर एक की एक नई दुनिया है, और मौत और जिंदगी के मातहत उसर और नुसर के दरमियान इतनी मनाज़िल हैं कि उनकी कोई इंतहा नहीं, कोई शुमार मुमकिन नहीं। लेकिन अगर आप अल्लाह पर भरोसा करें और उस पर यकीन कामिल रखें, उसकी बताई गई बातों को अपने लिए आसानी यकीन करें, तो बिल आखिर आपका हर कदम आपको मुश्किलात से आसानियों की तरफ लेकर जाएगा। वले तुकमिलुल इद्दता वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, पस अल्लाह ताला जब रोजे फर्ज फरमाता है और एक खास महीने में फर्ज फरमाता है तो जिनसे वो रोजे छूट जाए फरमाता है तुम इद्दत को पूरा कर लो बार और अल्लाह की तकदीर करो उसने तुम्हें हदायत अता फरमाई, और इसलिए खुदा ने रखा है रमजान का महीना और ये सारा निजाम लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बनो। जाहिर बात है कि इंसान मुसीबतों और तकलीफों पर जो शुक्र अदा नहीं किया करता, मालूम होता है कि तमाम निजाम जो सौम और सलात का निजाम है जिसका यहां जिक्र है, खुसूसन सौम की इबादत, ये इतनी बड़ी नेमतें अपने अंदर रखती है ये इबादत, ये निजाम इतना इंसान का मोहसिन है कि जो इंसान भी इसकी हकीकत से आगाह हो जाता है वो सवाए इसके कि अल्लाह का शुक्र करे कुछ राह नहीं पाता। लअल्लकुम तशकुरून रमजान से गुजरने के बाद सवाए इसके कि तुम खुदा के और ज्यादा शुक्रगुजार बंदे बन जाओ और कोई कैफियत नहीं हो सकती। और फिर इसके नतीजे में जो आखिरी इनाम है, हैरत अंगेज इनाम है, जो जिससे ऊपर इनाम मुमकिन नहीं, वो लिखाए बारी ताला है। और याद रखें कि लिखा मुमकिन नहीं रजा के बगैर, रजाए बारी ताला पहले है और लिखाए बारी ताला बाद में है। बाद लोग लिखा के आसान रस्ते ढूंढते हैं, सूफिया से पीरों फकीरों से वो जंतर मंतर तलाश करते हैं, वो तावीज गंडा ढूंढते हैं जिससे घर बैठे लिखाए बारी ताला हासिल हो जाए, और बाद में वो तकलीफ भी उठाते हैं इसमें। लेकिन असल मजमून जो इबादत का यहां बयान हुआ उसके बाद लिखाए बारी ताला को रखा, उससे मालूम होता है कि ये तावीजों में और जंतर मंतर में और खुदा की खातिर बाज कलिमात को बार बार दोहराने में रिजाए बारी ताला नहीं। जिस तरह खुदा जिंदगी बसर करने का इरशाद फरमाता है उस तरह जिंदगी बसर करने में रिजा है, और जब रिजा हासिल नहीं होगी तो लिखा कैसे हासिल हो जाए। बस अपनी इबादात को दुरुस्त करो, फिर लिखा की तमन्ना रखो, और खुदा वादा करता है रिजा सारा का इबादी अन्नी अन्नी फरीनी करीब। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुझसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं, फैनी करीब, मैं करीब हूं, उजीब दावत दाए दाने, मैं उन बंदों को जो मेरी तलाश में सरगर्दा रहते हैं, जो मेरी खातिर निकलते हैं, जो मुझे ढूंढने के लिए एक सफर इख्तियार करते हैं, उनको खुशखबरी देता हूं। उजीब दावत दाए दान, जब वो मुझे बुलाते हैं तो मैं उनकी पुकार को सुनता ही नहीं उसका जवाब देता हूं। फलयस्तजीब ली वल्युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, उनको भी तो चाहिए कि वो मेरी दावत के ऊपर लबैक कहा करें, मेरी बातों को तस्लीम किया करें, जिस तरह मैं चाहता हूं उस तरह जिंदगी बसर। तो दोबारा तवज्जो दिला दी कि खाली लिखा कोई चीज नहीं है, लिखा रजा की शर्त के साथ होती है, इससे पहले भी रजा की शर्त रखी गई है और इसके बाद भी रजा की शर्त रखी गई है। जो हकीकतन लिखा के मुकाम पर पहुंचते हैं वो पहले से बढ़कर रजा के दुनिया हो जाते हैं, पहले से बढ़कर उन्हें अतात का चस्का पड़ जाता है, उसकी लगन लग जाती है। तो पहले भी अताब का मजमून रखा और बाद में भी अताब का मजमून रखा, फलिस्तजीबूरी वल्योमी लाल लौंग यशरून, इसका यह मतलब नहीं है बाद में रखने का कि अभी तक गोया उनको ईमान ही नसीब नहीं हुआ था और खुदा में लिया था और खुदा की बातों का इनकार करते थे तब भी खुदा में लिया था, बल्कि इसमें तरक्की का अगला जीना दिखाया गया है। रमजान की इबादतों और दीगर इबादतों के जरिए जब इंसान खुदा की तरफ हरकत करता है, अल्लाह उसे एक लिखा एक जलवा अता फरमाता है, और उस जलवे के नतीजे में वो वहीं बैठ नहीं रहता, बल्कि पहले से बढ़कर ज्यादा लगन, ज्यादा शौक, ज्यादा जोर के साथ وہ خدا کی مزید جستجو کرتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ سب پھل اس کو اطاعت کے نتیجے میں ملا تھا، اس لیے اطاعت میں پہلے سے زیادہ ترقی کر جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس کا ایمان ضائع نہیں گیا، اور حقیقت میں ایک زندہ خدا، قدرتوں والا خدا موجود ہے، اس لیے وہ ایمان میں بھی ترقی کر جاتا ہے اور رشد کو پا جاتا ہے، یعنی اس عقل کل کو پا جاتا ہے جسے بعض مذاہب نے بدھا کا نام دیا ہے، بعضوں نے گیان کہا ہے، لیکن در حقیقت خدا کے وجود کی حقیقت کو اس حد تک سمجھنے کا نام ہے عقل، جس حد تک انسانی بناوٹ میں یہ ممکن ہے کہ وہ خدا کو سمجھ سکے۔ عرفان کا نام ہے روشنی۔ تو فرماتا ہے کہ اللہ انسان پھر عرفان کے درجے تک ترقی کر جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے بہت سے فوائد ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے، ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ خدا اپنے بندے کی زیادہ سنتا ہے پہلے سے اور بالکل قریب آ جاتا ہے اسے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رمضان کی مبارکات بیان فرمائی، ان میں یہ مضمون بھی بڑا کھول کر بیان فرمایا کہ رمضان کے دنوں میں اللہ تعالیٰ قریب آ جاتا ہے انسان کے، اتنا قریب کہ اور کسی عبادت میں اتنا قریب نہیں آتا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ہر نیکی کی کوئی جزا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، یعنی مقصود بذات ہوں میں اس عبادت کا، اور پھر وہ سلوک فرماتا ہے جو اپنوں کے ساتھ مالک کیا کرتے ہیں، پھر جو چاہیں آپ درخواستیں کریں، پھر خدا وہ سنتا ہے، مانتا ہے، لاڈ اور ناز کے سلوک فرماتا ہے انسان سے۔ اس لیے ایک بہت ہی عظیم شان برکتوں والا مہینہ ہے۔ خاص طور پر آج کل جو جماعت پر حالات ہیں، ان میں ضرورت ہے کہ کثرت کے ساتھ اہل اللہ پیدا ہوں جماعت میں، اس کثرت کے ساتھ تعلق باللہ والے پیدا ہوں کہ ایک رشتہ نہ رہے خدا سے، ہزار رشتے نہ نہیں، لاکھوں کروڑوں یا کروڑوں رشتے بن جائیں۔ ایک پیارے کی آواز کو اگر نظر انداز کر دیا جاتا ہو کبھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لاکھوں کروڑوں پیاروں اور محبت کرنے والوں اور محبوبوں کی آوازیں اٹھ رہی ہوں اور خدا تعالیٰ ان کو نظر انداز فرما؟ وہ تو اتنا پیار کرنے والا ہے، اتنا وفا کرنے والا ہے کہ ایک پیارے کی آواز کو نظر نہیں کیا کرتا، بس ایک کی خاطر وہ قوموں کی تردید بدل دیا کرتا ہے۔ اس لیے بہت کثرت سے دعائیں کریں، اور دعاؤں سے پہلے رضا کا تعلق قائم کریں۔ یاد رکھیں، جب تک رضا کے مضمون کو آپ نہیں سمجھتے، عبادت کے مفہوم کو آپ نہیں سمجھتے، اس وقت تک لقاء ممکن نہیں ہے، اور جب تک حقیقی لقاء نہ ہو، اس وقت تک انہی قریب کی آواز آپ کو نہیں آ سکتی۔ اجیب و دعوت دائزادان کی آواز آپ نہیں سن سکتے۔ اس لیے دعاؤں کی مقبولیت کے لیے یہ تمام شرائط ہیں، ان کو خوب اچھی طرح سمجھ کر اس میدان میں ترقی کریں۔ کبھی احمدیت کو شاید اتنی ضرورت نہ پڑی ہو دعاؤں کی جتنی آج ضرورت ہے۔ ہر طرف سے دشمن انتہائی بھیانک سازشیں کر رہا ہے، اور وہ مقدس وجود یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں موجود نہیں ہیں، جن کی ایک ذات کے ساتھ ساری کائنات کا دل دھڑک رہا تھا۔ خدا کی نظریں جب آپ پر پڑتی تھی تو اپنے زمانے میں، چونکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب اور خلیفہ تھے، اس لیے ساری کائنات کا آپ ایک خلاصہ تھے، دل تھے۔ اور وہ صحابہ جن کی آپ نے تربیت فرمائی، جن کو آپ نے اعلیٰ منازل اور مقامات تک پہنچایا، وہ بھی بہت کم رہ گئے، اور مصیبتیں ہیں کہ پہلے سے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی، دکھ ہیں جو پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ گہرے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ مشکلات جو کبھی ملکی حیثیت رکھتی تھی اب وہ بین الاقوامی حیثیت اختیار کر گئی، बड़ी बड़ी कौमें इन साजिशों में मुलव्वस हो चुकी हैं, और ऐसे क्राइम ही नहीं बल्कि बाद शवाहिद मिल रहे हैं जिनसे पता चलता है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी जमात को नहत बुरी नजरों से देख रही हैं, और जमात के खिलाफ हर साजिश करने वाले की मददगार और मुईन हैं। तो जब हालात ये हों तो सवाय इसके चारा ही कोई नहीं कि और ज्यादा शिद्दत के साथ, और ज्यादा इल्हा और दर्द के साथ अपने खुदा की तरफ दौड़े, और एक ताल्लुक ना हो, दुनिया के हर कोने में हर जगह जहां अहमदीत बसती है वहां खुदा वाली अहमदीत बस रही, जहां अहमदी बसते हैं वहां खुदा वाले बस रहे हैं। घेर में इन मुसीबतों का जब दुश्मन हमला करके घेरा डालता है तो उसका एक ही इलाज हुआ करता है कि उस घेरे को तोड़कर उस दुश्मन को घेरे में डाल दिया जाए, पर जब हर तरफ से बदनीयत और बदबातिन दुश्मन अहमदियत को घेरे में लेने की कोशिश कर रहा है, आप चारों तरफ से खुदा की मदद को पुकारते हुए सारे हर तरफ से दुश्मन को घेरे में ले और खुदा की नुसरत की लपेट में आ जाए, अल्लाह ताला की ताईद और मोहब्बत की लपेट में आ जाए, उस वसी तर दायरे की लपेट में आ जाए जिसे कोई दुनिया की ताकत पर तोड़ नहीं सकती। बस असल गुर यही है, दुनिया की कोशिशें, दुनिया के असबाब, हिकमत के जराए अख्तियार करना, ये सारे इंसान की हैसियत रखते हैं। असल चीज मकबूल दुआ है और असल चीज ताल्लुक मिला है। आजकल खसूसियत के साथ पाकिस्तान में जो दर्दनाक हालात गुजर रहे हैं वो एक बड़ा जरिया है आपकी रूहानियत को अंगेज करने का। पहले अगर ये मुश्किल था भी तो अब मुश्किल नहीं होना चाहिए कि उनके रूहानियत का ताल्लुक कल्बी तहरीकात से होता है, जज्बात से होता है, खुश मुलायत और रूहानियत का कोई जोड़ नहीं, एक रस्मी दीन का और रूहानियत का कोई जोड़ नहीं, और रूहानियत दुखों से गुजर के हासिल होती है। बस एक ये भी वजह है उसर की, उसर बजाते खुद मुराद नहीं, मकसूद नहीं है, बल्कि मुराद यह है कि जब दुखों में से आप गुजरते हैं तो आपकी रूहानियत तरक्की करती है और आप एक उसर यूसर के मजमून में, आसानी के मजमून में दाखिल हो जाते हैं, अल्लाह की बरह में आ जाते हैं, उसके प्यार की लपेट में आ जाते हैं। और इस पहलू से अगर वैसे दिल में कोई सख्ती हो या खुशकी हो तो अपने पाकिस्तानी भाइयों का ख्याल करें, बड़ी मुसीबतों और तकलीफों में मुबतला है। अभी हाल ही में जो दोबारा जुनून उठा है हुकूमत पाकिस्तान और बाज़ मुल्लाओं को, उसने जैसा कि मैंने पहले ही खुतबे में जिक्र किया था, अब सिंध का रुख अख्तियार किया है, और सिंध में जो कलमा मिटाने की तहरीक चलाई जा रही है उसमें पुलिस के तशद्दुद का बहुत बड़ा दखल हो गया। एक डिस्ट्रिक्ट थरपारकर का मुल्ला डिप्टी कमिश्नर है जो जब नवाब शाह में था वहां उसने फसाद मचाया, जब यहां आया तो उसने ये सेहरा अपने सर मानने की कोशिश की है कि मैं कलमा छीन के दिखाता हूं, जब और कोई शैतान नहीं छीन सका मैं छीन के दिखाता हूं। चुनाचे एक बड़ी मुहिम पुलिस के साथ मिलकर चलाई गई कि अहमदियों को मजबूर कर दिया जाए कि वो कलमे से ला तल्लुक का इजहार कर, लेकिन अहमदियों से कौन कलमा छीन सकता, उनका दिल लोच सकते हैं लेकिन उनसे कलमा और उसका प्यार नहीं छीन सकते। चुनाचे चंद कैदे की तो बीसियों और आ गए, बीसियों कैदे की तो सैकड़ों और आ गए, और हजारों तैयार बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी आए, दुआओं के खत लिख रहे हैं मुझे। उनका ये हाल है कि वो शदीद गर्मी में, शदीद तकलीफ में, नहायत ही गंदे और खौफनाक हालात में जो पाकिस्तान की कैदों के हैं, कैदखानों के हैं, उन हालात में भी आंखों में आंखें डालकर इन मसाइल के, फिर भी वो ना सिर्फ शौक रखते हैं बल्कि खत लिखते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, हमारी बारी गलती है, और जानते हैं कि नहायत दर्दनाक अजियतें भी दी जा रही हैं हमको पुलिस की तरफ से। जो अजियत के वाकयात सामने आए हैं उनमें से चंद, जिनकी डॉक्टरी रिपोर्ट ली गई, उनके मुताबिक रिपोर्ट ये मिली है कि डॉक्टर ने ताज्जुब से लिखा है, इतनी खौफनाक अजियत दी गई है इनको कलमा पढ़ने वाले के जुर्म में कि आम आदि मुजरिमों को भी पुलिस इतनी अजियत नहीं दिया करती जितनी तकलीफें इन नौजवानों को पहुंचाई गई। करोड़ हजार का दामन तार तार नहीं कर सके, उनके गलमे की मोहब्बत नहीं नोच सके उनके दिलों से। जो मिलने वाले जाते हैं वो बताते हैं कि हम तो उनको सबर की तलकीन करने जाते हैं, वो हमें देखकर हमें सबर की तलकीन करते हैं, कहते फिक्र न करो हम तो मौजें कर रहे हैं। जेल की दो दीवार पर कलिमा लिखा हुआ है, दिन रात वो वृत करते हैं अल्लाह ताला की अस्मा का और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध भेजते हैं, तो जेलों की फिजाएं बदल गई वहां। और जब वो हथकड़ी पहनते हैं तो नारा है तकदीर के साथ हथकड़ी पहनते हैं, हथकड़ी को चूम कर तकदीर पहनते हैं। तो जहां तक उनकी कैफियत का ताल्लुक है वो तो ये है, लेकिन जो बाहर है उनको अपनी आजादी दुख देती है, उनको अपना आराम काटने को दौड़ता है, उनके दुख जो दुख वाले बर्दाश्त में जो नहीं समझ रहे अपने दुखों को, दुख नहीं समझ रहे बाहर वाले महसूस कर रहे हैं, उनकी तकलीफों में मुबतला है सारी दुनिया, सारी दुनिया कहेंगे अजीब कैफियत है। जो तो दुखों में से गुजर रहे हैं वो उसको राहत समझ रहे हैं, और जो रात इतमान से बैठे हुए हैं वो राहत उनको दुख महसूस हो रहा है, और ये जालिम समझ रहे हैं कि ये इस्लाम की खिदमत हो रही है। सिर्फ इसी पर बस नहीं, और भी नहायत खौफनाक साजिशें हैं जो मुसलसल चल रही हैं। अभी कल ही का वाकया है कि सखन में एक देवबंदी मस्जिद में, और खासतौर पर इस वक्त हुकूमत का आला कार देवबंदी फिरका ही है, एक बम चलाया गया। वाकयात की तफसील तो हुकूमत ने जाहिर नहीं की, ये भी मुमकिन है कि वहां कोई अमीरों को मारने के लिए बम बनाया जा रहा हो वो फट गया हो, मगर बहरहाल उस मस्जिद में एक बम फटा जिससे दो आदमी हलाक हो गए, और सारे शहर में इश्तियाल अंगेज तकरीरें की गई कि अहमदियों ने अपने दो शहदा का बदला उतारने के लिए किया, और तमाम अहमदियों के जान माल को खतरा, बार बार नहायत खतरनाक किस्म के जुलूस और अंगेख किए गए, लोग जुलूस निकाले गए, लोगों को अंगेख किया गया कि इनके जान माल लूट लो, और उल्टा हुकूमत की तरफ से 13 अहमदियों को इस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है कि तुम मशकूक हो, जुर्म तो नहीं कह सकते लेकिन इस शक में गिरफ्तार कर लिया गया है कि तुमने ही ये बिठाया। हालांकि हरगिज़ बईद नहीं कि खुद हुकूमत के करीबों ने ऐसा करवाया, क्योंकि जिस किस्म का ज़ाब्ता अखलाक इस आमराना हुकूमत का है वो आप जानते हैं, सब दुनिया को खुला हुआ है। कई किस्म के इम्कान हैं, एक तो जैसा कि मैंने बयान किया ये भी हो सकता है कि किसी शरीफ ने वहां बैठकर साजिश की हो, और कई दफा पहले भी हुआ था 74 में भी, मसलन अटक में ये वाकया हुआ, एक मौलवी साहब का बेटा अहमदियों के ऊपर बम फेंकने की तैयारी कर रहा था और वो बना रहा था, वो बम से खुद उड़ गया, और उसके जुर्म में मासूम अहमदी जो बाहर बैठे हुए पकड़ लिए। डीसी कहता था उनको, मुझे पता है आपका कसूर कोई, मुझे पता था कि खुद जालिम है, लेकिन मैं हुकूमत वक्त की तरफ से और अवामी दबाव की वजह से मैं मजबूर हूं, तो ये भी हो जाया करता है साफ़। और ये भी मुमकिन है कि चूंकि बजट का वक्त है और कई किस्म के खतरात थे हुकूमत को, सियासी बेचैनी बढ़ जाएगी, और जो हैवी टैक्सेशन की गई है नई उसके नतीजे में आवाम में बेचैनी फैल जाएगी, तो क्यों ना हुकूमत की बजाय इस बेचैनी का रुख अहमदियों की तरफ कर दिया जाए। ये भी बईद नहीं है, ये भी बईद नहीं है कि किसी बरेलवी फिरके के आदमी ने ये साजिश की हो और अपने बदले उतारे हों देवबंदियों से, और इस यकीन में उतारे हों कि इसकी सजा तो बाहर अहमदियों को मिलनी है, हमें क्या फर्क पड़ता, ये भी उस मुल्क में बेच नहीं। जिस मुल्क में जाबता है आज कोई ना रहा हो वहां कोई चीज भी बेच नहीं हुआ करती। कई किस्म के इस्तेमाल और भी हैं, ये भी मुमकिन है कि बात सियासी पार्टियों में ये देखकर के दूसरे जराये से अवाम नहीं उठ रहे, अहमदियों के खून से अगर होली खेली जाए तो फिर ये सबसे ज्यादा आसान है पाकिस्तानियों के लिए, और बड़ी आसानी के साथ इस पर राजी हो जाते हैं, इसलिए ये तरीका अख्तियार किया जाए। और वैसी साजिश भी हो सकती है जैसे भुट्टो साहब के जमाने में हुआ, जो रकबा साजिश के नाम से मशहूर है केस, जिसकी कार्रवाई तहकीक की अभी तक शायद ही नहीं गई। बहरहाल को कई किस्म के इम्कान हैं, इहतमाल हैं, लेकिन जहां तक जमात अहमदी का ताल्लुक है, जो रिपोर्टें मिल रही हैं, अल्लाह ताला के फजल से तमाम जमात मर्द और जन बूढ़े बच्चे सब हौसलों में कतन खौफजदा नहीं है, ना इस हुकूमत से, ना इनके मुल्लाओं से, ना उन जालिमों से जो लोगों की बातें सुनकर तहकीक के बगैर नाहक खून पर आमादा हो जाते हैं। वो बड़े हौसलों में हैं और अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं और उनको तमाम दुनिया की जमात की दुआएं शामिल हाल हैं। इसलिए मैं आपको यह बताता हूं कि यहां भी वही मजमून जारी होगा कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तकलीफ नहीं चाहता। आसान तक रहो शैम और वह खैर रखो। बसा बात यह होता है कि तुम एक चीज को तकलीफ का मुझे समझ रहे होते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर होती। बार दफा इसी किस्म की आग से गुलजार पैदा हो जाया करती। इसलिए अल्लाह ताला से दुआएं करें क्योंकि वो कादर मुतलक खुदा है, वो कभी भी जमात को अकेला नहीं छोड़ेगा, वो मजलूमों का हामी है और हजर से मजलूमों का हामी है। इसलिए आप जानते हैं कि आप मजलूम हैं और मासूम हैं और जो दुख भी बर्दाश्त कर रहे हैं महज अल्लाह बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए इस रमजान में खुसूसियत के साथ बड़ी कसरत के साथ दुआएं करें, बल्कि इसको इस हफ्ते को खास दुआओं का हफ्ता बना लें कि अगला जुमा हमारे लिए खुशियों की खबर लेके आए, कोई दुख की खबर ना लेके आए। अल्लाह ताला हमारे भाइयों के साथी हो, उनका निगहबान हो, उनको हर मुसीबत और तकलीफ से बचाए, उनके दुख हम पर बहुत सख्त हैं, उनको सख्त समझना।
Oh,